यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 16 अक्टूबर 2020 के बुलेटिन की सुर्खियां। बहुतायत वाली दुनिया में करोड़ों लोगों को अब भी मयसर नहीं है एक वक्त की भरपेट भोजन खुराक। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कैसे कर रहा है भुखमरी का मुकाबला, एक इंटरव्यू। कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने में हाथ स्वच्छता है बहुत अहम, मगर करोड़ों लोगों को ये सुविधा नहीं है उपलब्ध। तपेदिक यानी टीबी का मुकाबला करने के लिए तुरंत और व्यापक संसाधन निवेश की जरूरत पर जोर, और कोविड 19 अपडेट के साथ साथ कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव यानी विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य आएं, पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2020 में भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त बुनियादी भोजन खुराक भी मयसर नहीं है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और आर्थिक समस्याओं ने विश्व भर में भुखमरी का स्तर बढ़ा दिया है, और कोविड 19 महामारी ने तो गरीबी में मुसीबतों का पहाड़ ही खड़ा कर दिया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP की एक ताज़ा रिपोर्ट में ये चिंता जाहिर की गई है। कॉस्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड 2020 यानी भोजन की एक खुराक की कीमत नामक इस रिपोर्ट में उन देशों का उल्लेख किया गया है जहां चावल और फलियों वाली मामूली खुराक भी लोगों की आमदनी की तुलना में बहुत महंगी होती है। दक्षिण सूडान ऐसे देशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां भोजन की मामूली खुराक की कीमत लोगों की दैनिक आमदनी की तुलना में 186% गुना महंगी होती है। ऐसे 20 देशों की सूची में 17 देश सब सहारा अफ्रीका क्षेत्र में स्थित हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने विश्व खाद्य दिवस के मौके पर दिए अपने वीडियो संदेश में बेबाक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बहुतायत वाली इस दुनिया में ये देखना बहुत दुखद है कि करोड़ों लोग अब भी हर रात भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। एक टिकाऊ भविष्य हासिल करने के संयुक्त राष्ट्र के सपने और लक्ष्य को हासिल करने के लिए और ज़्यादा प्रयास करने होंगे, जहां हर जगह हर एक इंसान को ज़रूरत के अनुसार पोषक भोजन मिल सके। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने खाद्य प्रणालियों को ज़्यादा टिकाऊ और जलवायु परिवर्तन के झटकों के लिए सहनशील बनाए जाने की महत्ता को रेखांकित करते हुए भोजन की बर्बादी रोकने की भी पुकार लगाई। उन्होंने ये सुनिश्चित किए जाने पर भी खास जोर दिया कि हर एक इंसान को टिकाऊ और स्वस्थ भोजन खुराक उपलब्ध हो। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के कार्यकारी निदेशक डेविड बीजली का कहना है कि नई रिपोर्ट ने संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक संकटों के विनाशकारी प्रभाव उजागर कर दिए हैं, जिन्हें कोविड 19 महामारी ने और ज़्यादा जटिल व गंभीर बना दिया है। कमज़ोर हालात में रहने वाले लोगों को इस स्थिति का दंश सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। कोरोना वायरस का कहर शुरू होने से पहले भी उनकी जिंदगियां तबाही के किनारे पर थीं। महामारी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भीषणतम मानवीय संकट पैदा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP दुनिया के अनेक देशों में खाद्य असुरक्षा का सामना करने में असाधारण मदद कर रहा है। इन्हीं कार्यों के लिए WFP को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। इस पुरस्कार के जरिए भुखमरी के खिलाफ लड़ाई और संघर्ष प्रभावित इलाकों में शांति बहाली के लिए एजेंसी के योगदान को मान्यता दी गई है। नोबेल समिति के मुताबिक UN एजेंसी युद्ध व हिंसा के दौरान भुखमरी को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की रोकथाम में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए UN न्यूज हिंदी की अंशु शर्मा ने बात की भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि और निदेशक बिशव पाराजुली से।
ये हमारे लिए और WFP के लिए बहुत गौरव और आनंद की बात है, क्योंकि आज से 60 वर्ष पहले से विश्व खाद्य कार्यक्रम संसार में करीबन 80 मुल्क में काम करें, 17,000 स्टाफ काम करें, ये हर लोगों के लिए ये बहुत गौरवमय और आदर्शमय पुरस्कार है।
तो कौन से वो कार्य हैं जिनके लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को ये सम्मान मिला है?
एक खाद्यान्न एक ऐसा चीज है आदमियों के लिए मानवता के लिए बहुत जरूरत होता है। अब हम 21वीं शताब्दी में ऐसा खाद्यान्न ना मिले ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। तो WFPA कर रही है, जिसके पास खाद्यान्न नहीं है उसके लिए खाद्यान्न पहुंचाने में कोशिश कर रही है। और संसार में ये भी WFP बता रहे कि यहाँ पर 700 मिलियन लोग हैं, और ये जो कोविड हुआ है उससे जो खाद्यान्न का अभाव था, जो भूखमरी बढ़ रही थी, उसको भी बहुत चर्चा से बाहर निकाल रहा है विश्व खाद्य कार्यक्रम। और साथ साथ ये ही है कि जहाँ जो लड़ाई हो रही है और जहाँ लोगों को लड़ाई के तवर से भूखमरी में रहना पड़ रहा है, ना इतना आदमी को भूखमरी होना और इतना आदमी को खाद्यान्न पहुँचानो ये आसान की बात नहीं है। एक बात ये है कि ये शांति के लिए बहुत ही योगदान दे रही है।
आपने कहा कि शांति और स्थिरता के लिए खाद्य सुरक्षा बहुत अहम है, तो दुनिया भर में इसके क्या उदाहरण देखने को मिलते हैं?
जहाँ पर ये जो अभी लड़ाई हो रही है सीरिया और येमन और इराक और माने सोमालिया इस लोगों में, वहाँ आदमी लोगों को खाना मिले वहीं बैठे तो वो लोग वहाँ से बाहर देश में नहीं जाएं, जैसे रेफ्यूजी होके और डिस्प्लेस होके बाहर नहीं जाएंगे।
इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, पता है news.un.org/hi। कोविड-19 महामारी के खिलाफ कारगर उपचार की तलाश के लिए संयुक्त राष्ट्र के संयोजन में जारी अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता वैक्सीन ट्रायल के ताज़ा नतीजे दर्शाते हैं कि संक्रमितों की मौतों को टालने में परीक्षण वाली दवाओं का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अनेक देशों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में आई तेजी के बीच आगाह किया है कि स्वास्थ्य जोखिमों के मद्देनज़र कोविड-19 को बेकाबू होकर फैलने देने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जा सकती। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
6 महीने पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एकजुटता ट्रायल को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ये जाँचना था कि कोविड-19 के उपचार में कौन सी दवाएँ कारगर हैं। रेमडेसिविर और इंटरफेरोन के परीक्षणों के नतीजे दर्शाते हैं कि ये दवाएं मौतों को टालने या फिर मरीजों के अस्पताल में भर्ती रहने का समय कम करने में या तो असरहीन साबित हुई हैं या फिर उनका मामूली प्रभाव ही हुआ है। इससे पहले जून महीने में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का परीक्षण रोके जाने की घोषणा की गई थी और जुलाई में 2 अन्य दवाओं के परीक्षण के तहत मरीजों के पंजीकरण को रोक दिया गया था। इन नतीजों के बाद ये बताया गया है कि फिलहाल डेक्सामेथेजोन नामक दवा से ही कोविड-19 के गंभीर मरीजों के उपचार में मदद मिली है। दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 3,86,00,000 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 10,93,000 लोगों की मौत हुई है। हाल के दिनों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, विशेष रूप से यूरोपीय देशों में। इससे पहले सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने कहा कि हाल के दिनों में वायरस को इस तरह से फैलने देने पर चर्चा हुई है जिससे सामूहिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जा सके, लेकिन उन्होंने कहा कि वायरस को अनियंत्रित ढंग से फैलने की अनुमति देना नैतिक नहीं है और ये कोई विकल्प नहीं हो सकता।
Never in the history of public health has herd immunity been used as a strategy for responding to an outbreak, let alone a pandemic. It's scientifically and
सार्वजनिक स्वास्थ्य के इतिहास में इस तरह की रणनीति कभी इस्तेमाल नहीं की गई है। उनका कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी किसी वायरस से लोगों को बचाकर हासिल की जाती है, उन्हें संक्रमित बनाकर नहीं। बताया गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद कुछ हफ्तों तक लोगों में प्रतिरोधक क्षमता रहती है, लेकिन अभी उसकी अवधि या मजबूती पर पुख्ता समझ का अभाव है। अभी तक के अनुमान और विश्लेषण दर्शाते हैं कि विश्व की 10% से भी कम आबादी कोविड-19 से संक्रमित हुई है। साथ ही कोविड-19 से लोगों की सेहत पर दीर्घकाल में होने वाले असर को समझने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे बहुत से मरीजों के बारे में मालूम हो रहा है जो संक्रमण के लंबे समय बाद भी पीड़ा में हैं। इन हालात में चिंता जताई गई है कि वायरस को बेकाबू होकर फैलने देने से अनावश्यक संक्रमण, कष्ट और मौतें होंगी। इसलिए मृत्यु दर को तो घटाना अहम है ही, उसके साथ साथ संक्रमणों की संख्या में कमी लाना भी जरूरी है।
विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 सहित अन्य संक्रामक बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में हाथ स्वच्छता बेहद अहम है, लेकिन दुनिया भर में करोड़ों लोगों के पास हाथ स्वच्छता के लिए पर्याप्त साधनों का अभाव है। गुरुवार 15 अक्टूबर को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने ये जानकारी दी है। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
सबसे कम विकसित देशों में लगभग 3/4 जनसंख्या के पास हाथ धोने की बुनियादी सेवाओं का अभाव है। यूनिसेफ में जल, साफ सफाई व स्वच्छता विभाग की सहायक निदेशक केली एन नेलर ने इस अवसर पर कहा कि वैश्विक महामारी ने बीमारी की रोकथाम में हाथ स्वच्छता बरते जाने की अहमियत को रेखांकित किया है। साथ ही इसने अनेक लोगों के लिए पहले से मौजूद एक समस्या को मजबूती से उजागर किया है। हाथों की साबुन से सफाई अब भी लाखों बच्चों के लिए उनकी पहुंच से दूर है, जहां वे पैदा होते हैं, रहते हैं और सीखते हैं। उन्होंने कहा कि यह अस्वीकार्य है कि सबसे अधिक निर्बल समुदाय अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए सरलतम उपाय अपनाने में सक्षम नहीं है। हमें तत्काल कार्रवाई करनी होगी ताकि हर किसी के लिए हर स्थान पर हाथों की साबुन से धुलाई अभी और भविष्य में संभव हो सके। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े दर्शाते हैं कि विश्व में हर 5 में से महज 3 लोगों के पास ही हाथ धोने की बुनियादी सुविधाएं हैं। 43% स्कूलों में साबुन और पानी से हाथ धो पाना संभव नहीं है और इस समस्या से करोड़ों स्कूली बच्चे प्रभावित हैं। मध्य और दक्षिण एशिया में शहरी इलाकों में रह रहे 22% यानी लगभग 15 करोड़ लोगों के पास हाथ धोने की सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। बांग्लादेश के शहरी इलाकों में यह आंकड़ा लगभग 50% यानी लगभग 2,90,00,000, भारत में करीब 20% यानी करीब 9,10,00,000 शहरी लोगों के घरों में हाथ धोने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ दुनिया भर में बच्चों और उनके परिवारों के लिए हाथ धोने की सुविधाओं की सुलभता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों के तहत 130 से ज्यादा देशों में हाथ धोने की आदत विकसित करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि तपेदिक यानी TB बीमारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में प्रगति को बरकरार रखने के लिए वित्तीय संसाधनों और कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। UN स्वास्थ्य एजेंसी ने बुधवार को अपनी नई रिपोर्ट के साथ एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि समुचित उपायों के अभाव में TB की रोकथाम व उपचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पाने में विफलता हाथ लगने की आशंका है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
टीबी दुनिया की उन सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में है जिनसे हर दिन लगभग 4,000 लोगों की मौत होती है। बुधवार को जारी ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 में टीबी पर वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली उच्च स्तरीय बैठक में निर्धारित लक्ष्यों और टीबी उन्मूलन के लिए UN स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा किए जा रहे प्रयासों का लेखा जोखा पेश किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्ष 2015 से 2019 के बीच टीबी के मामलों में 9% और उसकी वजह से होने वाली मौतों में 14% की गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद टीबी का मुकाबला करने में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता अब भी एक चुनौती बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गेब्रेसस ने इन तथ्यों की जानकारी देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण और समय रहते निदान, रोकथाम, उपचार और देखभाल की न्यायसंगत सुलभता अब भी एक चुनौती है, और अगर हमें अपने लक्ष्यों को 2022 तक हासिल करना है तो दुनिया भर में त्वरित कार्रवाई की तत्काल जरूरत है। टीबी की बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से संक्रमित होने के कारण होती है, जिसका अक्सर सर्वाधिक असर फेफड़ों पर होता है। ٹی بی اکثر اس کے مریضوں دوارا کھانسنے، چھینکنے یا تھوکنے سے نکلنے والی بیکٹیریا کے ہوا میں پھیلنے سے ہوتی ہے۔ ٹی بی کا علاج سمبھو ہونے کے باوجود اس کے کارن بڑی سنکھیا میں لوگوں کی موت ہوتی ہے، اور یہ ایچ آئی وی سنکرمت لوگوں کی موت کا بھی ایک پرمکھ کارن ہے۔
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि भ्रष्टाचार न केवल एक अपराध है बल्कि अनैतिक होने के साथ साथ लोक विश्वास भंग करने का एक वृहद रूप भी है। यूएन महासचिव ने भ्रष्टाचार नामक वैश्विक अभिशाप को जड़ से मिटाने के लिए हर स्थान पर हर एक इंसान से एकजुट होने का आह्वान किया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को जारी एक वक्तव्य में कहा कि कोविड 19 महामारी के दौर में भ्रष्टाचार सबसे कमजोर हालात वाले लोगों के लिए और भी ज्यादा विनाशकारी साबित हो रहा है। महासचिव ने कहा कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने की कार्रवाइयों में सटीक निगरानी की कमी और अपर्याप्त पारदर्शिता जैसी स्थितियों का दोहन करने के मौके बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों तक पहुंचने वाला धन ऐसे समय में उनसे छीना जा रहा है जब उन्हें इस धन की बहुत सख्त जरूरत है। महामारी के दौरान भ्रष्टाचार की मौजूदगी से वैश्विक प्रशासनिक क्षमताओं पर गंभीर असर पड़ सकता है, और ये स्थिति दुनिया को टिकाऊ विकास लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों में पटरी से उतार सकती है। महासचिव ने कहा कि भ्रष्टाचार से स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सीधे जोखिम जुड़े हुए हैं। भ्रष्ट व बेईमान व्यापारी खराब वेंटिलेटर, खराब गुणवत्ता वाली परीक्षण किटें और नकली दवाओं जैसे त्रुटिपूर्ण उत्पाद बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग, कंपनियां या संगठन आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं, उनके साथ ऐसे भ्रष्ट व्यापारियों की मिलीभगत के कारण कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बाजार एकतरफा हुए हैं जिसके कारण बहुत से लोगों को जीवन रक्षक इलाज नहीं मिल पा रहा है। महासचिव ने संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र पारदर्शिता और जवाबदेही को कोविड 19 महामारी से निपटने के उपायों और उसके बाद के दौर में भी प्राथमिकता देना जारी रखेगा। उन्होंने सभी लोगों से भ्रष्टाचार व शोषक तत्वों के खिलाफ एकजुटता के लिए हाथ मिलाने की अपील भी की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि ग्रामीण महिलाएं कृषि, खाद्य सुरक्षा और भूमि व प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, मगर फिर भी उन्हें भेदभाव का निशाना बनाया जाता है। उनके साथ व्यवस्थागत नस्लभेद होता है और वो ढांचागत गरीबी में जीवन जीती हैं। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
महिलाओं के सामने दरपेश मुश्किलें और चुनौतियां कोविड 19 महामारी के समय में और ज्यादा बढ़ गई हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं, जरूरी दवाएं और वैक्सीन वगैरह की उपलब्धता पहले से ही सीमित होती है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि सामाजिक रीति रिवाजों और लैंगिक पूर्वाग्रहों के कारण ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता कम होती है। ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल खाई बहुत बड़ी है और केवल 1/4 महिलाओं को ही कृषि के लिए डिजिटल समाधानों तक पहुंच हासिल है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाओं की खुशहाली और प्रगति के लिए संसाधन निवेश करना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोविड 19 महामारी ने भूमि और अन्य संसाधनों के लिए उनके अधिकारों को कमजोर हालत में डाल दिया है। उनके साथ लैंगिक भेदभाव तो होता ही है, और बहुत से देशों में रीति रिवाज और परंपराएं भूमि और संपदा पर महिलाओं के अधिकार सीमित करती हैं। कोविड 19 ने विधवा महिलाओं को मिलने वाली भूमि और संसाधन विरासत को भी जोखिम में डाल दिया है। यूएन प्रमुख ने कहा कि इन सब जोखिमों के बावजूद ग्रामीण महिलाएं महामारी का मुकाबला करने के प्रयासों में अग्रिम मोर्चों पर मुस्तैद रही हैं, लेकिन तालाबंदी के दौरान उनका बिना आय वाला कामकाज और घरेलू कामकाज बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं की महामारी के समय में मदद करना और भविष्य के लिए उनकी मजबूती बढ़ाने के लिए आपसी एकजुटता और सभी की मदद की जरूरत होगी। घरों में देखभाल की जिम्मेदारी महिलाओं और पुरुषों के बीच साझा करने के लिए नए उपायों की आवश्यकता होगी, खासतौर पर बहुत हाशिए पर जीने वाले ग्रामीण इलाकों में।
हम बताते चलें कि आप अपनी मोबाइल डिवाइस पर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी।